दोस्तों, पंजाब में फैले हुए ड्रग्स या फिर यूं कहें कि मादक पदार्थों के सेवन का जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो आजकल बढ़ चढ़कर चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारी फिल्मों के द्वारा इस विषय को उठाया गया है कि किस तरह से समाज को ड्रग्स की जो आदत है वो खोखला बना रही है। हालांकि हम जानते हैं कि ड्रग्स का प्रश्न सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन हाल में जब पंजाब के बारे में चर्चा चल रही है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब का ड्रग्स का जो जलत प्रश्न है वो वास्तविकता में क्या है, वहां की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इससे निपटने के लिए क्या क्या काम कर रही हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मेडिको सोशल वर्कर डॉक्टर अवनीश जौली जी, जो 20 साल से भी ज्यादा इस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। जौली जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद सरिता जी।
जौली जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में ड्रग्स का इश्यू आजकल बहुत सुर्खियों में है, हम बहुत उसके बारे में सुनते आ रहे हैं, वास्तविकता जानना चाहते हैं, किस तरह से युवा जो पीढ़ी है हमारी वो इस ड्रग्स के सिकंजे में जा रही है, और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं।
हरिता जी, जो नशा है ये सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है आजकल, क्योंकि जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, हम लोगों ने अच्छी अच्छी बिल्डिंग, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना हम शायद पिछले कुछ सालों में भूल गए। तो इसलिए नशा तो है पंजाब में, और आज से नहीं है, सदियों से नशा है। और जो हमारे पंजाब के मशहूर कवि हुए मोहन सिंह जी, वो लिखते हैं कि पंजाब को अगर हम 5 नदियों का देश कहते हैं, तो वहाँ छठी नदी नशे की है। तो इसलिए ये समस्या तो है, लेकिन आजादी के बाद ये समस्या और बढ़ी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वो जो साथ के इंटरनेशनल बॉर्डर से जो ड्रग्स आई और वो जो सब पॉलिसीज रहती हैं देशों की दूसरे को कमजोर करने के लिए, उन्होंने नशा और बढ़ाया। और उसके साथ साथ एक दौर आया मॉडर्नाइजेशन का, जो न्यू रिच कल्चर आया, उसने नए लोगों को प्रलोभन दिया, लोग नशों में पड़े, और नशा अब हर तरह का नशा वहाँ अवेलेबल है, छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़े से बड़े शहर तक, और आसानी से मिल जाता है। और सरकार इसमें जो काम कर रही है वो तो है ही, गैर सरकारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, धार्मिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लोग लगे हुए हैं, और लोग चाहते हैं कि युवाओं को बचाया जा सके और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नशों से दूर रख सकें, बचा सकें और एक अच्छा समाज बना सकें। क्या है कि अपॉर्चुनिटी जो है युवाओं के पास काम करने की नहीं है, पैसे सबको चाहिए, और लोग पैसा कमाने के चक्कर में हर चीज हर जगह अवेलेबल करने लगे। तो जिस तरह अभी हाथे खुल गए, हाथा मतलब कि इस तरह की छोटी शॉप्स जहां खाना और शराब और बियर मिलेगी, ये पीछे पारित किए गए थे कुछ कानून कि ये हो गया, तो उसमें साथ साथ जो नॉन ऑथोराइज जगह हैं वहां से लोग लेने लगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो केमिस्ट शॉप्स हैं बिना जो लाइसेंस के खुली हुई हैं, और आप कहीं से भी कोई भी दर्द की गोली, नशे की गोली जो होती है वो ले लीजिए, जो सब्सटेंस अब्यूज है वो भी बड़ा है, कि जो अगर आप पेन किलर ज्यादा खा लिए तो भी आपको नशा हो जाएगा, कॉरेक्स हो गया, और इसके साथ साथ अपना कंसर्वरी हो गई, ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो हमें अक्सर खांसी में लेते हैं, लोग इसको लेते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो लोग गरीब हैं वो आयोडेक्स खा लेते हैं, जो पेट्रोल है वो निकाल के पी लेते हैं गाड़ियों से, क्योंकि इस तरह का चलन, मतलब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लोग जो नशा ले रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से ही ले रहे हैं, बड़ी बड़ी ड्रग्स लेते हैं या बड़ी बड़ी ब्रांडेड शराब पीते हैं, लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं, भांग का नशा है, धतूरे का नशा है, और इसके साथ जो हमारे कुछ लोग तो यहाँ तक है, जिस तरह मैंने बताया एवरेक्स खाते हैं, कुछ लोग जो लिजर्ड है जो मर जाती है चिपकली, उसको उबाल के उसका पानी पी लेते हैं। ये सब चीजें हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसके हिसाब से वो नशा खरीदता है, और अवेलेबल तो है ही।
जॉली जी, ये तो बात हो गई कि लोग कैसे कैसे नशा करते हैं, और बहुत ही हैरान करने वाली बात आपने बताई है, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी बात आपने बताई है। आप कंसल्टेंट रहे हैं, आपने रिहैबिलिटेशन के लिए भी लोगों को मदद किया है जो ड्रग्स एडिक्ट हैं, कैसा रहा आपका अनुभव, आप क्या क्या मानते हैं कि रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है और क्या क्या चैलेंजेस आ रही है उसमें?
रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस हरिता जी बहुत बड़ा है, उसमें अकेला एडिक्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसका आसपास का माहौल इन्वॉल्व है, समाज इन्वॉल्व है, सिस्टम इन्वॉल्व है। अभी तक इस क्षेत्र में ड्रग एडिक्शन के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कैसे होने चाहिए, उनके बायलॉज क्या होने चाहिए, उनकी देखरेख कैसी होनी चाहिए, उनको कैसे चलाया जाना चाहिए, कोई निर्धारित पॉलिसी नहीं। कई तो सेंटर्स ही बंद पड़े हैं, बिल्डिंग बहुत सुंदर बन गई हैं लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है और लोगों का विश्वास सरकारी जो रिहैब सेंटर्स है उनसे उठा सा नजर आ रहा है। लेकिन कोई और अल्टरनेटिव नहीं है गरीब इंसान के पास, वो जाए तो कहाँ जाए। तो बहुत ही संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, हमने हार नहीं मानी, कि हम आने वाली पीढ़ी को नशे से बचा सकें। और सरकार ने भी हार नहीं मानी है, कुछ साल पहले नेहरू युवा केंद्र ने एडोलेसेंट टीन क्लब्स का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, उनके साथ मिलकर मुझे काम करने का मौका मिला। तो हम लोगों ने पंजाब में जितने भी यूथ क्लब्स हैं उनको इन्वॉल्व किया, उनके जरिए हमने छोटे छोटे टीम क्लब्स बनाए और उन टीम क्लब्स में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे उस शहर के और उनको ट्रेन किया और उन बच्चों को नशों के बारे में जानकारी दी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि जो कोई एक बार एडिक्ट हो जाता है उसे ठीक करने में जितना पैसा खर्च आता है उससे कहीं कम पैसे में हम आने वाली जो ये नई पीढ़ी है इसे बचा सकते हैं। और फोकस यही रहता है कि अगर हम युवाओं को बचा सकें, अगर युवा बच जाएंगे तो समाज बच जाएगा। और इसलिए जितनी भी संस्थाएं हैं उनको एनरोल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने, कल्चर अफेयर्स ने उन बच्चों को अल्टरनेटिव दिए काम करने की। कोई स्पोर्ट्स में उनको अल्टरनेटिव दिया गया, उनको सिंगिंग में दिया गया, थिएटर में दिया गया, पढ़ाई में दिया गया और हमें उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। लेकिन फिर भी थोड़े बड़े होते हैं और अखबार पढ़ने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं तो अक्सर बच्चों को लगता है कि अगर मैंने सिगरेट पी ली तो मैं बड़ा हो गया। तो इस तरह पीयर प्रेशर के जरिए किसी न किसी नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ तो अपने आप को बचा लेते हैं, रोक लेते हैं उस प्रेशर से, कुछ लोग रोक नहीं पाते तो इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और समस्या बनते चले जाते हैं, परिवार के लिए भी, अपने आप के लिए भी और समाज।
जॉनी जी, अब तक तो हम सिर्फ बात कर रहे थे पंजाब की कि पंजाब में क्या दिक्कतें आ रही हैं और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं क्या क्या कार्य कर रही है, लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि ये प्रश्न सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं, ये पूरे विश्व का प्रश्न है। खास करके जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए, वहां पर भी ये प्रश्न उतने ही गंभीर हैं। हालांकि उतनी चर्चा इतने जोर शोर से हम नहीं कर रहे, तो क्या टिप्पणी होगी आपकी, क्योंकि आपने वैश्विक स्तर पर भी इस क्षेत्र में काम किया हुआ है।
अगले महीने जुलाई में डरबन में एड्स का विश्व स्तर पर एक सम्मेलन होने जा रहा है, उस पर ये इश्यूज उठेंगे और मुझे लगता है कि सही प्लेटफॉर्म है कि जितने बुद्धिजीवी हैं वहां पहुंचे, आके मंथन करें, कुछ करने का प्रयास करें। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा समाज बना के हमें आने वाली पीढ़ियों को देना है, हम कहीं चूक जाएंगे। और इसलिए जितने भी ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब लोगों का जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बहुत ही थैंकलेस सा जॉब है।
डॉक्टर जॉली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया SBS हिंदी के साथ बात करने के लिए। आपने बहुत ही अहम और बहुत ही वास्तविकता हमारे श्रोताओं के सामने रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद हरीदा जी।